अरुणिमा की आंखें धीरे धीरे खुली। उसे अपने बदन में तेज दर्द का एहसास हुआ। कराहते हुए वो बिस्तर पर हल्का सा उठने की कोशिश की, लेकिन बेडशीट पकड़कर खुद को रोक लिया। उसका पूरा बदन दर्द से भर गया था। हेलो अरुणिमा, कैसी हो? ये आवाज सुनकर अरुणिमा पूरी तरह चौंक गई। वो आशिक के साथ हिल स्टेशन के फार्म हाउस में थी, जहां कोई नौकर भी नहीं था। वहां उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उसे उसके नाम से बुला रही थी। हैरानी से उसने दरवाजे की ओर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। दरवाजे पर डॉक्टर निशा खड़ी थी। डॉक्टर निशा को सामने देखकर अरुणिमा को यकीन नहीं हो रहा था। डॉक्टर निशा अपने मासूम चेहरे के साथ उसके सामने खड़ी थीं। वही डॉक्टर निशा जो पहले अरुणिमा की डॉक्टर हुआ करती थीं और जिन्हें आशिक ने अरुणिमा को भगाने के लिए सजा दी थी। डॉक्टर निशा, आप यहाँ? अरुणिमा हैरानी से बोली। निशा मुस्कुराई और हल्का सा सिर हिलाया। और क्या, मैं अंदर आ सकती हूँ? अरुणिमा घबराकर जल्दी से सिर हिलाई। वो खुद दर्द में तड़प रही थी। उठने की कोशिश करते हुए उसने निशा को अंदर आने का इशारा किया। निशा अंदर आई और सामने रखी कुर्सी पर बैठकर अपना बैग साइड में रख दिया। फिर उसने अरुणिमा से कहा, कैसी हो? अरुणिमा घबराकर निशा को देखते हुए बोली, डॉक्टर मेरा छोड़िए, मैं पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ डॉक्टर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। ये सब मेरी गलती थी। मैं आशिक को अच्छी तरह जानती थी, उसके बाद ही मैंने आपको इन सब में शामिल किया। डॉक्टर निशा ने अपना चेहरा हल्का सा नीचे किया, फिर अरुणिमा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब हालातों ने किया है। और मिस्टर रायचंद ने जो किया था वो मेरे लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग था। उन्होंने तो लगभग मुझे जान से ही मार दिया था, पर लास्ट टाइम पर तुम्हारी वजह से उन्होंने मेरी जान नहीं ली, और इसीलिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। उस ट्रॉमा से निकलने में मुझे थोड़ा वक्त ज़रूर लगा, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपनी बाकी पेशेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती थी। अरुणिमा का चेहरा शर्म से भर गया। डॉक्टर निशा को उसकी वजह से कितना कुछ सहना पड़ा था। लेकिन उसने हैरानी से पूछा, लेकिन डॉक्टर आप यहाँ क्या कर रही हैं, मतलब इस जगह पर? निशा के चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उसने कहा, एक्चुअली मुझे मिस्टर रायचंद का मैसेज मिला था कि तुम्हें कुछ हेल्थ इश्यू हो गया है और इसीलिए वो मुझे तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए बुलाना चाहते हैं। पहले तो मन किया कि मना कर दूं, लेकिन फिर तुम्हारे बारे में सोचा। तुम जिस सिचुएशन से गुजर रही हो, ऐसे में ज़रूर कोई बड़ी बात रही होगी, तभी मिस्टर रायचंद ने मुझे दोबारा कॉन्टैक्ट किया, वरना उस हादसे के बाद से उन्होंने किसी से दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की। तो बताओ अरुणिमा, क्या प्रॉब्लम है? अरुणिमा डॉक्टर निशा की पूरी बात सुनी और फिर बताया कि उसकी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, उसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह दुख रही है और अब तो उठना भी मुश्किल हो गया है। निशा ने अरुणिमा को चेक किया और उसे सहारा देकर धीरे से बिठाया। फिर उसने बताया, तुम्हारे बैक पर जोर का झटका लगा है, जिसकी वजह से वहाँ सूजन आ गई है। ठीक होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। डॉक्टर निशा अपना चेकअप पूरा करके अपने बैग में सामान रखने लगी, लेकिन उन्होंने शक भरी निगाह से अरुणिमा को देखा। अरुणिमा की नज़र को समझ गई और जल्दी से चेहरा नीचे कर लिया। शुक्र था कि वो निशा के साथ थोड़ी कंफर्टेबल थी, वरना किसी और डॉक्टर के साथ इतना सहज नहीं हो सकती थी। निशा ने उसे देखते हुए कहा, कौन सा महीना है? अरुणिमा जानती थी कि ये सवाल तो होना ही था। अगर कोई डॉक्टर उसे चेक करेगा तो उसकी प्रेगनेंसी पकड़ने में देर नहीं लगेगी, इसलिए उसने झूठ बोलने से बेहतर समझा कि डॉक्टर निशा को सच बता दे। उसने निशा की आंखों में देखते हुए कहा, अभी 3 दिन पहले 1 महीना पूरा हुआ है। मिस्टर रायचंद को पता है? निशा के इस सवाल ने अरुणिमा के चेहरे पर डर की लकीर खींच दी। वो घबराकर निशा को देखती है और धीरे से सिर नामे हिलाई। निशा उसके ऐसे रिएक्शन से ज्यादा हैरान नहीं हुई, क्योंकि उसने आशिक के बारे में अरुणिमा से जो सुना था उसके बाद से यह सब होना जायज था। अरुणिमा ने निशा को सब कुछ बता दिया, अपनी प्रेगनेंसी से लेकर सरोबेसी की बात तक, और क्यों वो ये सब छुपा रही है। उसने सारी बातें निशा के सामने रख दी, क्योंकि उसे यही एक रास्ता नजर आया था अपना दर्द थोड़ा हल्का करने का। उसकी बात सुनकर निशा बहुत ज्यादा हैरान हुई, हालांकि वो उतनी हैरान भी नहीं हुई थी, क्योंकि आशिक की हरकतें वो खुद एक्सपीरियंस कर चुकी थी, तो वो अरुणिमा के साथ कैसे पेश आएगा ये सोचकर वो ज्यादा चौंकी नहीं। हैरानी उसे अरुणिमा की नात पर हुई थी कि वो अपनी प्रेगनेंसी की बात अब तक आशिक से छुपा रही है। तो क्या फैसला किया है तुमने? कब बताने वाली हो तुम आशिक को इस बारे में? निशा अरुणिमा की स्थिति अच्छी तरह समझ रही थी। आशिक को बताना एक बहुत बड़ा टास्क है और यह अरुणिमा को मुश्किल में भी डाल सकता है। बेशक वो अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में पहले सोच रही थी, और आशिक की हरकतें कहीं से भी ऐसी नहीं लग रही थी कि अरुणिमा अपने बच्चों के बारे में उसे एक बड़ा सरप्राइज बताए। क्या मिस्टर रायचंद बच्चे नहीं चाहते? डॉक्टर निशा ने अरुणिमा की परेशानी समझते हुए ये सवाल किया। अरुणिमा की आंखों में आंसू छलकने लगे थे। अरुणिमा ने एक गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल किया और धीरे से सिर हिलाते हुए बोली, उसे बच्चे नहीं चाहिए, इसीलिए तो उसने सरोगेसी प्लान की है। डॉक्टर निशा ने अरुणिमा की पूरी बात सुनी और समझी, लेकिन उसने कोई झूठी तसल्ली नहीं दी, क्योंकि वो एक महिला होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी है।
उसने अरुणिमा की ओर देखकर कहा, देखो अरुणिमा, मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी को एक महीना हो चुका है और तुमने ये बात अब तक अपने हस्बैंड को नहीं बताई है। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने वाला है, तुम ज्यादा दिन तक ये बात छुपा कर नहीं रख सकती। अरुणिमा डॉक्टर निशा की बात सुनकर समझ रही थी। वो जानती थी कि निशा गलत नहीं कह रही है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो हर दिन एक नई लड़ाई लड़ रही थी। ऐसे में वो आशिक के बर्ताव को देखकर अपने लिए कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। आशिक ने पहले ही साफ कर दिया था कि उसे बच्चे नहीं चाहिए। अरुणिमा को अच्छे से याद था जब शादी के कुछ ही दिन हुए थे और आरती के पिता के कहने पर वो एक अनाथ आश्रम में चैरिटी इवेंट के लिए गए थे, तब उसने देखा था कि आशिक किस तरह बच्चों से दूर भाग रहा था, यहाँ तक कि वो उनकी ओर देख भी नहीं रहा था। वो तो बस अरुणिमा के लिए वहां गया था और बहुत मुश्किल से आधा घंटा रुका था। जाते जाते उसने डोनेशन किया और जल्दी से निकल गया था। अरुणिमा ने कुछ नहीं कहा, उसका चेहरा उदासी और दर्द से भर गया था। डॉक्टर निशा ने उसका दर्द समझ लिया। वो जल्दी से अरुणिमा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अरुणिमा मैं तुम्हारी सिचुएशन समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बस ये कहूँगी कि जितनी जल्दी हो सके कोई फैसला लो, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। इसके बाद डॉक्टर निशा वहाँ से चली गई। उन्होंने अरुणिमा को अपना पर्सनल नंबर दिया था जिससे वो उनसे ऑनलाइन प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी सवाल या परेशानी शेयर कर सकें। डॉक्टर निशा ने जो मेडिसिन दी थी वो बहुत असरदार थी। अरुणिमा के कमर का दर्द लगभग गायब हो गया था और अब उसे उतना दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। वो थोड़ा बहुत चलने लगी थी। चलते चलते जब वो कमरे की खिड़की के पास आई तो उसने देखा कि बाहर का मौसम बहुत सुहाना है, लग रहा था कि फिर बारिश होगी। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। अरुणिमा को इस बात का एहसास हो गया था कि आशिक शायद यहाँ नहीं है और यही एहसास उसे और ज्यादा राहत दे रहा था। खिड़की पर बैठकर अरुणिमा ने देखा कि सड़क पर कुछ बच्चे छाता लेकर इधर उधर भाग रहे थे। हालांकि बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन वे रंग बिरंगे छातों के साथ खेल रहे थे। ये देखकर अरुणिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस मुश्किल समय में भी उसे हंसने की एक वजह मिल गई थी।
डॉक्टर निशा ने जाते जाते कहा था कि अब उसके बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और इसका मतलब ये है कि उसे जितना हो सके खुश रहना है और स्ट्रेस कम लेना है, क्योंकि वो जैसा हेल्थ खुद का रखेगी बच्चों का हेल्थ भी वैसा ही बनेगा। अचानक अरुणिमा को अपने पेट में कुछ हलचल सी महसूस हुई और उसे याद आया कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उसे कुछ खाने की ज़रूरत थी। वो जल्दी से उठकर किचन की ओर गई। उसे पता था कि किचन में खाने के नाम पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आशिक ही ज़रूरत का सामान लाता है और अगर वो नहीं है तो किचन खाली ही होता है। अब कुछ होगा या नहीं इसका उसे पता नहीं, लेकिन इस वक्त उसे आइसक्रीम खाने की बहुत तेज़ क्रेविंग हो रही थी। जैसे ही अरुणिमा किचन में पहुंची, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने ये किचन पहले भी देखा था, यहाँ पहले कोई फ्रिज नहीं था, लेकिन अब उसने सामने एक डबल डोर का एकदम नया फ्रिज देखा, वो भी अपने स्टिकर के साथ, शायद अभी लाया गया था। लेकिन ये यहाँ कब लाया गया और क्यों?